लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को G20 समूह के नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति से पारित किए जाने का स्वागत किया है और उसे वैश्विक विभाजनों के दौर में प्रभावशाली नेतृत्व का एक उदाहरण बताया है। शिखर वार्ता के दौरान G20 के सदस्यों ने अफ्रीकी संघ को अपने नवीनतम सदस्य के रूप में समूह में जगह दी, जिसका UN ने स्वागत किया। UN महासचिव ने जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित एक सत्र को संबोधित किया था। उन्होंने विश्व नेताओं से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती लाने और जलवायु न्याय को समर्थन प्रदान करने के इरादे से और अधिक महत्वाकांक्षा दर्शाने का आह्वान किया। UN महासचिव ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले पत्रकारों को संबोधित किया। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
UN महासचिव ने ध्यान दिलाया कि G20 शिखर बैठक की थीम एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य शाश्वत आदर्श है, लेकिन ये मौजूदा दौर को कटघरे में भी खड़ा करती है, क्योंकि हम एक वैश्विक परिवार के तौर पर फिलहाल सही से काम नहीं कर पा रहे हैं।
Divisions are growing, tensions are flaring up, and trust is eroding.
विभाजन गहरे हो रहे हैं, तनाव बढ़ते जा रहे हैं और भरोसे का क्षरण हो रहा है। दुनिया संक्रमण के कठिन दौर से गुजर रही है, जहां भविष्य बहुत ध्रुवीय नजर आता है, लेकिन मौजूदा बहुपक्षवादी संस्थाएं एक बीते हुए समय को ही परिलक्षित करती हैं। उन्होंने वैश्विक वित्तीय तंत्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। UN प्रमुख ने 21वीं सदी की बुनियाद में स्थापित की जाने वाली कारगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पुकार लगाई, जो कि UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हों और जो मौजूदा समय की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करें। UN प्रमुख ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर बैठक में उनकी एक सरल मगर जरूरी अपील है, मानवता के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने और साझा भलाई के लिए हमें एक साथ आना होगा। इस क्रम में उन्होंने G20 नेताओं से दो अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने का आह्वान किया। जलवायु संकट से निपटने के लिए कारगर उपाय किए जाने होंगे और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने वाले कदम उठाए जाने होंगे। UN प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र और G20 समेत कोई भी अन्य समूह इन चुनौतियों का अकेले अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए सभी को एक परिवार के रूप में एक साथ आकर एक पृथ्वी और एक भविष्य की रक्षा करनी होगी।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक नई रिपोर्ट में आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ताप लहरों की गहनता व आवृत्ति बढ़ रही है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं और रेगिस्तानी धूल के फैलने से ये ताप लहरें और गंभीर रूप धारण कर रही हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है और मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर भी असर हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं शिवानी काला।
यूरोपीय संघ की जलवायु सेवा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में तापमान वृद्धि की वजह से इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी पड़ी है। ये पहली बार है जब अगस्त का महीना इतना गर्म साबित हुआ है और इसी वर्ष जुलाई के बाद अब तक का दूसरा सर्वाधिक गर्म महीना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार उच्च तापमान न केवल अपने आप में एक खतरा है, बल्कि इससे हानिकारक प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। 2022 के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल ताप लहरों के कारण किस तरह वायु गुणवत्ता में खतरनाक गिरावट देखी गई। पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि एवं हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी असर होता है। वहीं 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यूएन प्रमुख ने अपने संदेश में बद से बदतर हो रहे वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे वैश्विक आपात स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान किए जाने का आह्वान किया है। वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, जिसके मद्देनजर इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग को अहम माना गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है स्वच्छ वायु के लिए एकजुट, जिसके जरिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों, निवेश में वृद्धि और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारियों पर बल दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के समापन के साथ ही मंगलवार 5 सितंबर को 78वां सत्र शुरू हुआ। इस अवसर पर बहुपक्षवादी सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष कसावा कोरोसी ने सचेत किया कि भू राजनैतिक प्रतिद्वंद्विताओं और इस दौर में देशों में पारस्परिक सहयोग परम आवश्यक है। 25 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र पर इन देशों के प्रतिनिधि शांति को आगे बढ़ाने, सुरक्षा और सतत विकास जैसी आपस में गुथी हुई चुनौतियों का समाधान तलाश करने हेतु अपने बात विश्व के समक्ष रखेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे सचिन गौड़।
यूएन महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता करने वाले कसाबा करोसी ने अपने समापन संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों का उल्लेख किया, शांति व सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार। उन्होंने एकीकृत समग्र समाधानों की अहमियत को रेखांकित किया, जिससे न केवल मौजूदा चुनौतियों से निपटा जा सके बल्कि भावी संकटों से भी रक्षा हो। उनके संबोधन के बाद 78वें सत्र के लिए नव निर्वाचित अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने महासभा प्रमुख कार्यालय की शपथ ली और फिर उन्हें औपचारिक रूप से प्रतीकात्मक हथौड़ा सौंपा गया। महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने अपने उद्घाटन संबोधन में 4 महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं का उल्लेख किया, शांति, समृद्धि, प्रगति और सततता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य नीति निर्माता निकाय के तौर पर यह महासभा की विशेष जिम्मेदारी है कि हमारे प्रयासों की आधारशिला एक बहुपक्षवादी व्यवस्था बनी रहे, जो कि यूएन चार्टर के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो। डेनिस फ्रांसिस ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों को साकार करने के नजरिए से आगामी SDG शिखर बैठक को एक अहम अवसर बताया। उन्होंने COVID-19 से उपजी स्वास्थ्य चुनौतियों के मद्देनजर सहन सक्षम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के निर्माण को बढ़ावा दिए जाने का आग्रह किया है, जिसके लिए वैश्विक एकजुटता और सहयोग की जरूरत होगी।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने देशों में सरकारों से आग्रह किया है कि शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए नियामन व्यवस्था तैयार की जानी होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रही है शिवानी काला।
यूएन एजेंसी ने डेटा सुरक्षा व उपयोक्ताओं के निजता के लिए उपाय किए जाने का भी आग्रह किया है और उपयोक्ताओं यानी यूजर्स की आयु सीमा का भी ख्याल रखा जाना होगा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जेन AI उपकरण जैसे कि ChatGPT की मदद से सर्वनिर्मित लिखित सामग्री, तस्वीरें, वीडियो, संगीत और सॉफ्टवेयर कोड को तैयार किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म तेजी से उभरा है और दुनिया में करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिनमें कई छात्र भी हैं। मगर इस टेक्नोलॉजी से चिंताजनक तथ्यात्मक गलतियां भी हो सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरणों के सुरक्षित व नीतिपक्ष इस्तेमाल के लिए नीतियां कुछ ही देशों में लागू की गई हैं। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजूले के अनुसार जेनरेटिव AI मानव विकास के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान और पूर्वाग्रह भी पनप सकते हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि संत पापा फ्रांसिस न्यूयॉर्क में 18 और 19 सितंबर के लिए निर्धारित क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव CGI 2023 की आम सभा को रिमोट लिंक के माध्यम से संबोधित करेंगे, जिसमें रोम स्थित बम्बीन जेसु अस्पताल के संरक्षक भी भाग लेंगे। संत पापा फ्रांसिस सोमवार 18 सितंबर को कार्यक्रम के शुरुआत के समय न्यूयॉर्क समयानुसार प्रातः 9:15 बजे अर्थात रोम समयानुसार अपराह 3:15 बजे प्रतिभागियों को रिमोट लिंक के माध्यम से संबोधित करेंगे। क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव गैर सरकारी संगठनों और परोपकारी संगठनों के नेताओं सहित व्यवसाय, श्रम और वित्त जगत के प्रमुखों, प्रभावशाली युवा अधिवक्ताओं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य सरकारी अधिकारियों तथा नागर समाज के प्रतिनिधियों को विश्व समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रभावी मॉडल तलाशने के लिए प्रेरित करता है। परम धर्म पीठीय प्रेस के वक्तव्य के मुताबिक संत पापा फ्रांसिस अपने संबोधन में अनेक वैश्विक मुद्दों को उठाएंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आप्रवासी और शरणार्थी संकट, बच्चों की सुरक्षा तथा बम्बीन जेसु अस्पताल का मिशन और योजनाएं शामिल हैं। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन CGI आम सभा का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित कई अन्य उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति भी भाग ले रहे हैं। परम धर्म पीठीय वक्तव्य में बताया गया कि बम्बीन जेसु अस्पताल को वित्तीय समर्थन देने वाली क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव एक गैर लाभकारी संगठन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्पताल की मानवतावादी परियोजनाओं का समर्थन करता है, जिसमें लाइलाज बच्चों को समर्पित बाल चिकित्सा और प्रशामक देखभाल केंद्र भी शामिल है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बम्बीन जेसु अस्पताल तमाम विश्व के सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क देखभाल प्रदान करता है, जिनमें से कई बहुत गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित हैं। विज्ञप्ति के अनुसार बम्बीन जेसु अस्पताल ने पिछले 18 माहों में युद्ध से बचने के लिए अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर 2000 से अधिक यूक्रेनी मरीजों का उनके परिवारों के साथ इलाज और मेजबानी की है। बीजिंग में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस के विशेष दूत कार्डिनल मत्तेओ जुपी ने यूक्रेनी युद्ध को समाप्त करने तथा शांति की तलाश में बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर देने हेतु यूरेशियन मामलों के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि से मुलाकात की। वेटिकन ने गुरुवार को एक परम धर्म पीठीय वक्तव्य जारी कर इस बात की पुष्टि की कि कार्डिनल जुपी ने गुरुवार को बीजिंग में यूरेशियन मामलों के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि ली ह्यू से बातचीत की। अपने बयान में परम धर्म पीठ ने कहा कि यूक्रेन में शांति की तलाश हेतु संत पापा फ्रांसिस के विशेष दूत ने उदार और सौहार्दपूर्ण माहौल में चीन के विशेष प्रतिनिधि ली ह्यू से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि इस अवसर पर यूक्रेनी युद्ध और उसके त्रासदिक परिणामों पर चर्चा की गई तथा बातचीत को प्रोत्साहित करने और शांति की ओर ले जाने वाले रास्ते खोजने के प्रयासों को संयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परम धर्म पीठ के बयान में यह भी कहा गया कि दोनों नेताओं ने खाद्य सुरक्षा की समस्या को भी संबोधित किया, इस उम्मीद के साथ कि अनाज के निर्यात की जल्द ही गारंटी दी जा सकेगी, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो सबसे अधिक जोखिम में हैं। बीजिंग में कार्डिनल जुपी के मिशन से पूर्व परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने बताया था कि उनकी यात्रा मानवीय पहल को बरकरार रखने तथा उन रास्तों की तलाश करने के लिए संत पापा फ्रांसिस द्वारा वांछित मिशन के एक और कदम का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि न्यायपूर्ण शांति की ओर अग्रसर हुआ जा सके। इटली में जन्मे और बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जुपी इससे पहले शांति मिशन को प्रोत्साहित करते हुए 5 और 6 जून को कीव, 28 और 29 जून को मॉस्को तथा 17 से 19 जुलाई तक वॉशिंगटन की यात्राएं कर चुके हैं। अपनी यात्राओं के दौरान कार्डिनल ने इन राष्ट्रों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की तथा मिशन के मानवतावादी पहलुओं और शांति प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। वेटिकन में गुरुवार को इताली फिल्म ईओ कैपिटानो फिल्म के निर्देशक मत्तेओ गारोने ने फिल्म के अभिनेताओं के साथ संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय के वक्तव्य में बताया गया कि गुरुवार 14 सितंबर को संत मर्था आवास में इस अवसर पर ईओ कैपिटानो फिल्म के निर्देशक मातेओ गारोने तथा फिल्म के आप्रवासी अभिनेताओं ने संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी हाल ही में फिल्म ईओ कैपिटानो ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लायन जीता है। गुरुवार 14 सितंबर को वैटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक प्रासाद की फिल्म लाइब्रेरी में उक्त फिल्म दर्शाई गई, जो यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे अफ्रीकी आप्रवासियों की दुखद कहानी बयां करती है। फिल्म के प्रमुख अभिनेता मामादो कोआसी हैं, जिनके आप्रवास अनुभव पर फिल्म की कहानी आधारित है। लीबिया में भीषण बाढ़ और तूफान डैनियल पर जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बाढ़ से लगभग 3 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिसने पूरे समुदायों को तबाह कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रेसेंट के मुताबिक पूर्वी लीबिया में तूफान के कारण 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तथा प्रभावित इलाके में कम से कम 10,000 लोग लापता हैं। 5,000 लोगों के शव मिले हैं, जबकि कम से कम 30,000 आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। इसी बीच कम से कम 3 अस्पताल ध्वस्त हो चुके हैं और कम से कम 10 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। हालांकि मृतकों की सही संख्या का अब तक पता नहीं चल पाया है। बीमारी के भय से शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि पूर्वी लीबिया में शक्तिशाली तूफान डैनियल के कारण लगभग 3 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं और कई घरों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचों को हुए भारी नुकसान के बाद बढ़ती संख्या में बच्चों और परिवारों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। लीबिया में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे यूनिसेफ के प्रतिनिधि मिशेल सरदेई ने कहा, एक दशक से अधिक समय के संघर्ष के बाद लीबिया के बच्चे एक और त्रासदी का सामना कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता जीवन रक्षक सहायता बढ़ाना है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता तथा जल की आपूर्ति करना, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना, परिवारों का पता लगाना और रक्त जनित बीमारियों को रोकना हमारे प्रथम प्रयासों में से है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।